ये स्थान दिया। जलात उत्पपात चूर्णम, जल से एकदम वो जो है मैनाक पर्वत उड़ गया और वो ऊपर चला गया। और ऊपर जाने के बाद में फिर हनुमान जी महाराज ने उसके मनोरम शिखर भाग देखे, वहां पर किन्नर देवता वगैरह सब विराजमान, उनको देखा। और आदित्योदय शंका से ही उल्लिखित भी रिवाम्बरम, उसके सोने के ऐसे ऐसे शिखर भाग थे कि मानो वे आकाश के अंदर कुछ लिखने जा रहे हो, इतने ऊंचे ऊंचे सोने के शिखर भाग थे। ऐसा वो विशाल मैनाक पर्वत को हनुमान जी महाराज ने देखा और देख करके हनुमान जी ने विचार किया कि ओ हो, यहाँ हमको समुद्र के अंदर एक बहुत बड़े विघ्न का सामना करना पड़ रहा है, बड़ी आफत आ गई। ऐसा विचार करके हनुमान जी जा तो रहे थे, अपनी छाती से यूं धक्का लगाया, उसके कई शिखर थे वो ढर ढर ढह पड़े और ढह पड़े। तब उस समय में वो मैनाक पर्वत खूब राजी हुआ और राजी होकर के नाचने लगा, जोर जोर से शब्द करने लगा और बड़ा प्रसन्न होकर के हनुमान जी को कहने लगा, ए हनुमान, तुमने बड़ा विचित्र कर्म किया है। ऐसा कौन दूसरा प्राणी है जो मेरे शिखर को तोड़ देवे? तुम राघव कुल के अंदर पैदा होने वाले समुद्र के काम करने के लिए जा रहे हो। सत्वाम राम हिते युक्तम, आज सागर की तरफ से, समुद्र की तरफ से मैं स्वागत करने के लिए आपके पास आया हूँ, क्योंकि जिसका उपकार लिया हुआ होता है उसको दूसरे का, जिससे उपकार लिया है उसका उपकार करना ये सनातन धर्म होता है। आप प्रतिकारार्थी हो, इसलिए आप सम्मान के योग्य हो। माने आपने पहले सुग्रीव को राज्य दिलवाया है राम से, उन्हीं राम के कार्य के लिए आप जा रहे हो, आप बहुत बड़े सनातन धर्म का पालन करने जा रहे हो। हे हनुमान जी, ये समुद्र जहाँ से तुम उड़े हो वहाँ से 100 कोस की दूरी पर है, इसलिए तुमको विश्राम करना चाहिए। और मेरे यहाँ अच्छे अच्छे कंदमूल फल है, जिन फलों को खाने के बाद कभी भूख नहीं लगती है, जहाँ मेरे अच्छे सरोवर है जिनका जल पीने के बाद फिर आगे प्यास नहीं लगती है, ऐसे आप कंदमूल फल और पवित्र जल पी लीजिए, थोड़ी देर आप विश्राम कीजिए। जहाँ तक आपके निश्चित अवधि का प्रश्न है, निश्चित अवधि तो आपकी कब भी पूरी हो गई, अतः थोड़ी देर विश्राम करने के बाद आपकी निश्चित अवधि में क्या फर्क पड़ने वाला है, वो तो आपका पहले ही पड़ चुका है। और हे हनुमान, ये तो मैंने आपको सागर की तरफ से बात कही है, और अब मैं व्यक्तिगत रूप से आपको अपनी बात कहना चाहता हूँ। आप हमारे एक माननीय अतिथि हो, बड़े श्रेष्ठ अतिथि हो, अपने घर में आए हुए अतिथि का मूर्ख व्यक्ति भी सम्मान करता है, फिर आप तो धर्मात्मा हो। और मैंने आपका बड़ा भारी उपकार लिया है, एक बहुत बड़ी रहस्य की बात आपको बताता हूँ। हे हनुमान, पहले सतयुग की बात है, ये जितने पर्वत थे इन सब के पांख लगी रहती थी, हम लोग इधर उधर खूब उड़ा करते थे, हमारी पांखें जब हम लेकर के उड़ते थे तो सारे प्राणी डरते थे कि जाने कहाँ आकर के गिर जाएंगे, हम कहीं जाकर बैठ जाते तो भाई वहाँ सारे नगर वो ध्वस्त हो जाते, कितने प्राणी मर जाते। उस समय में देवताओं ने विचार किया कि हमारा काम तो यहाँ मनुष्यों की, प्राणियों की रक्षा करने का है, ये पर्वत पंखों से उड़ करके असंख्य प्राणियों को बहुत थोड़े समय में समाप्त कर देते हैं, अतएव इन पर्वतों की पांख काट दी जाए। तो इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लेकर एक एक पर्वत के पांख काटने चालू कर दिए और हजारों 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 पर्वतों के पांख काट दिए। मैं बड़ा डर गया, डर करके मैं समुद्र की ओर जा रहा था, मेरे पीछे पीछे इंद्र भी आ रहा था, मैंने देखा कि इंद्र मुझे मारेगा। उस समय वायु देवता ने, तुम्हारे पिता ने मेरी रक्षा की, मैनाक, मैं तुम्हें धक्का दे रहा हूँ, तुम जल्दी से जल्दी समुद्र में घुस जाओ। मैंने भी देखा कि समुद्र के बीच के भाग में ज्यादा श्रेष्ठ होगा जाना, इसलिए मैं वायु के द्वारा धक्का दिया हुआ समुद्र के बीच में आकर के और डुबकी लगा करके अंदर बैठ गया। अब इंद्र भी क्या कर सकता था। उस दिन वायु ने मेरा प्राण बचाया, मेरे पंख बचाए, अतएव उस दृष्टि से भी मैं आज तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि मेरा फल तुम स्वीकार कर लो। ये सब बात सुनकर के हनुमान जी महाराज कहने लगे, हे नागराज, नग माने पर्वत, कई अर्थ होते हैं नग के, तो कहा कि हे नगराज, हे पर्वतराज, आप मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे आतिथ्य से बड़ा प्रसन्न हूँ। देखो कोई आदमी भोजन तो खूब अच्छा करा दे, लेकिन मुंह से यदि अच्छा नहीं बोले तो उस भोजन का स्वाद थोड़ा ही आता है। आपने मुंह से कितना अच्छा शब्द कहा है, इससे बढ़िया और मेरा क्या आतिथ्य सत्कार होगा। आपको अपने कर्तव्य का बोध हुआ, सागर को भी अपने कर्तव्य का बोध हो गया। बस ये कर्तव्य का बोध ही सबसे बड़ा आतिथ्य होता है। आप अपने मन में कोई विचार नहीं करना, हे मेनाक, इस समय मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, मैं किसी भी प्रकार से मध्य में विश्राम कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं बिना किसी रुकावट के लंका जा रहा हूँ। हे मेनाक, मैं और क्या कर सकता हूँ, आपसे गले मिल सकता हूँ। इतना कहकर हनुमान जी ने मेनाक पर्वत का स्पर्श किया और फिर आगे के लिए रवाना हो गए। मेनाक पर्वत देखता रहा और हनुमान जी बड़े वेग से चले जा रहे हैं। मेनाक पर्वत को बड़ा बड़ा सुख मिला, बड़ा आनंद मिला। इस प्रकार से राम जी महाराज के दूत हनुमान जी आकाश में चले जा रहे हैं। देवता लोगों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि देखो आज हनुमान का ये आज हमने दूसरा पराक्रम देखा है। पहला पराक्रम तो ये कि महेंद्र पर्वत पर चढ़ करके कितने बड़े साहस की बात की, दूसरा ये कि देखो मेनाक पर्वत पर इन्होंने विश्राम नहीं किया। सब देवता लोग, सिद्ध लोग, ऋषि लोग, चारण लोग, विद्याधर लोग, ये सब आपस में विचार करने लगे कि अब और अपने को क्या काम करना चाहिए। तब इंद्र ने कहा, हे मेनाक, अब तो हनुमान जी चले गए, इंद्रादि देवता आए, हे मेनाक, अब तुम हमसे कभी मत डरना, हम तुमको अब कभी नहीं मारेंगे। तुम देखो आज कितना बड़ा काम किए हो, मेरी बड़ी सहायता किए हो, हनुमान को विश्राम देने की बात कहकर तुमने देवताओं की लाज बचाई है। ये हनुमान 100 योजन मार्ग को पूरा पार करेगा और हे मेनाक, हम सब देवता अव्यक्त रूप से छिपे छिपे हनुमान के साथ है, हम भी हनुमान जी के साथ हैं। ये आज राम के हित के लिए तुमने बड़ा अच्छा काम किया, मैं तुमसे बड़ा खुश हुआ हूँ। अब मेरे वज्र से तुमको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो पर्वत बड़ा प्रसन्न हो गया, देवता भी बड़े प्रसन्न हो गए। उसके बाद वो पर्वत जो है वो देखता रहा और अपने स्थान पर अंदर सागर के अंदर ही चला गया। इधर देवताओं ने, सिद्धों ने, सब ने आपस में विचार करके आगे एक नई युक्ति खेली। उन्होंने सुरसा नाम की एक नाग माता थी, सर्पों की माता, उस सुरसा को बुलाया। सुरसा से कहा कि हे सुरसे, ये जो हनुमान जा रहा है सागर के ऊपर, तुम ऐसा करो इसके मार्ग में थोड़ी बाधा डालो, तुम राक्षस का रूप बना करके जाओ, बहुत विशाल आकृति वाले जाओ और बड़े बड़े आंखें निकालो, दांत निकालो, मुंह बनाओ और बड़ा विकराल अपने सिर के बाल जो है फैला करके खड़े हो जाओ और कहो कि नहीं, तुम पहले हमारे मुख में आओगे तब तो मैं जाने दूंगी, नहीं तो तुमको नहीं जाने दूंगी। ऐसा करके हनुमान के मन में एक विषाद पैदा करो, दुख पैदा करो। वो दुख पैदा करने से देखे हनुमान क्या बुद्धि से काम करता है। देखो यदि हनुमान तुम्हारे डर से डर जाए ना, तब उसको समझा देना कि देखो मैंने तो परीक्षा ली है, आप डरो मत। और यदि हनुमान तुमको जो है जीतने, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया काम है, फिर तो ये रावण को निश्चित रूप से जीत लेगा। और यदि तुम्हारे सामने हनुमान भयभीत हो जाए, तुम इसको निर्भय बना देना, क्यों कि आगे आने वाली बाधा को व्यक्ति पहले से ही पार कर लेता है तो आगे आने वाली बाधा से मुकाबला करने में उसको साहस मिलता है। सुरसा ने कहा बहुत अच्छी बात है। देखते देखते ही सुरसा हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, विकराल रूप बनाई हुई, उसकी आंखें बड़ी बेडोल, दांत बड़े बेडोल और उसके जो है ये आंखें ऐसी जैसे ये अब जो है ग्रसने वाली है, दांत इतने लंबे लंबे, बस वो हनुमान जी के सामने जितना विकराल रूप बना सकती थी बनाई, हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, हे बानर कहाँ जाते हो, मैं तुम्हारे बीच में खड़ी हूँ, मैं तुम्हारा भक्षण करूंगी, आओ मेरे मुंह में आ जाओ, मुझे विधाता ने वरदान दिया है कि तुम्हारे पास स्वतः ही कोई प्राणी आ जाएगा, उसको तुम अपने मुंह में खींच लेना, या तो वो स्वयं मुंह में आ जाए नहीं तो सांस के द्वारा खींच लेना, वो तुम्हारे मुंह में आ जाएगा, इसलिए तुम हमारे अन्न हो, तुम हमारे खाद्य हो, मैं तुमको खाऊंगा, मेरे मुंह में आ जाओ, मेरे मुंह में आ जाओ। हनुमान जी महाराज को डरे नहीं, हनुमान जी ने कहा, ए माता मैं तुमको नमस्कार करता हूं, देखो दशरथ नंदन राम दंडकारण्य में अपनी पत्नी को खो बैठे हैं, उनको कोई राक्षस ले गया है, अतएव उस सीता की खोज के लिए हम सैकड़ों बानर समुद्र के किनारे प्रतीक्षा कर रहे हैं सीता जी की, मैं खोज करने के लिए लंका की तरफ जा रहा हूँ, मैं राम का दूत हूँ, मैं सीता की खोज करके जब राम को वापिस समाचार सुना दूंगा, जब राम के मन में विश्वास हो जाएगा कि सीता लंका में ही है और वो चढ़ाई करने के लिए लंका की ओर प्रस्थान करेंगे, उस समय में मैं स्वतः ही आपके पास आ जाऊंगा, इसलिए आप मुझे इस समय जाने के लिए रोके मत, क्योंकि इस काम के पीछे बहुत बड़ा काम बिगड़ने वाला है। इस प्रकार से कहा तो सुरसा ने कहा, मैं कोई राम को नहीं जानती, मैं कोई सीता लंका नहीं जानती, मैं कोई रावण नहीं जानती, मैं मेरे सामने आए हुए भोजन को जानती हूँ, तुमको मालूम है राक्षस लोगों के सामने अपने सामने आया हुआ खाद्य ही सबसे बड़ा होता है, अपने भोजन के सामने उसके लिए कोई कुछ नहीं है, चाहे कोई हो भोजन ही सब कुछ होता है। सुरसा ने अपना मुंह फैलाया और मुंह फैला करके वरेश पुरा दत्त है, मैं तुमको फिर बोलती हूँ कि मुझे विधाता ने वरदान दिया है, अपने मुंह में आए हुए को खा लेना, आज तुम मेरे मुंह में आ गए, ये मेरा भाग्य है, आते हो आओ मेरे मुंह में आ जाओ। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि अच्छी बात है माँ, यदि आप अपना मुंह बढ़ाते हो तो करो मेरे सामने मुंह बड़ा करो। तो उसने मुंह बड़ा किया तो जो है सुरसा ने 10 योजन मुंह बड़ा बना लिया, तो हनुमान जी ने 20 योजन कर लिया, सुरसा ने भी 20 योजन किया, तो हनुमान जी ने 30 योजन किया। अब लो मेरे को मुंह में ले, अब वो बड़ा, अब वो जितना बढ़ावे हनुमान जी और ही बड़ा बना दे। हनुमान जी ने 30 योजन मुंह बड़ा बना, अब 30 योजन शरीर बड़ा बना लिया, कैसे खाओगी अपने को बताओ। अब हनुमान, अब उसने 40 कर लिया तो हनुमान जी ने 50, सुरसा ने 60 तो हनुमान ने 70, सुरसा ने 90 योजन किया तो हनुमान जी भी 80 योजन किया तो हनुमान जी 90 योजन के हो गए, तो सुरसा 100 योजन जितना मुंह बढ़ा लिया, खूब बड़ा मुंह बनाया। अब उसकी जो है जिह्वा बड़ी मोटी, कान भी बड़े मोटे, और उसका मुंह कितना बड़ा विशाल हो सकता है, नरकोपम नरक के समान उसका मुंह। हनुमान जी महाराज उस समय में देखेगी अपने मुंह को बंद करेगी, उससे पहले पहले अपन तो इसके मुंह में से होकर निकल जाएंगे, तो बहुत छोटे बन गए देखते देखते ही, और अंगूठे जितने होकर उसके मुंह में गए और वो यूं बंद करने लगे जितने हनुमान जी वापस बाहर आ गए। बाहर आने के बाद अंतरिक्ष में रहने वाले प्रविष्टोस्मि हनुमान जी महाराज ने कहा, हे सुरसे तुम दक्ष की पुत्री हो मैं जानता हूँ, और मैं तुम्हारे मुख में से होकर साबत निकल गया हूँ, अब दोबारा तुम मुझे नहीं खा सकती, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वो नहीं है, तुम एक बार ही किसी प्राणी को मुंह में ले सकती हो। वो सुरसा बड़ी प्रसन्न हो गई, अपने असली स्वरूप में सामने आई, सुंदर उसका स्वरूप सुरसा का, अच्छा कपड़ा पहना हुआ, अच्छा उसका स्वरूप, और उसने बानर से कहा कि हे बानर मैं तुमको भरपूर आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारा मनोरथ सफल होगा, जाओ बानर बड़े आनंद के साथ तुम सीता जी की खोज करोगे, तुम बंदरों के प्राण बचाओगे, तुम राम जी के मन में उत्साह बढ़ाओगे, तुम सारी सेना लेकर के आओगे और तुम रावण पर विजय प्राप्त करोगे, सीता को लेकर आप लोग अयोध्या जाओगे, ये बात मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, सब देवता लोग हनुमान जी की इस बात के ऊपर साधु साधु बहुत अच्छा बहुत अच्छा, देवता लोगों ने बड़ी खुशी मनाई। अब हनुमान जी महाराज सागर के ऊपर से फिर चले ही जा रहे हैं। अब भाई वहां जो है सागर के ऊपर से जा रहे हैं तो सागर के अंदर के जो जीव जंतु हैं वो बड़े वे हनुमान जी के वायु वेग के कारण से वे कभी आगे जाते कभी पीछे जाते, यूं वो जानवर भी इधर उधर होने लग गए। और ऐसे चलते चलते हनुमान जी महाराज बहुत दूर तक चले जा रहे हैं। नक्षत्र चंद्र चंद्रार नक्षत्र ग्रह नक्षत्र चंद्रार के तारागण विभूषिते विमले, ऐसा जो विमल आकाश है, आकाश जिस आकाश में ग्रह नक्षत्र तारा वगैरह सब विभूषित हो रहे हैं और जिस आकाश में महर्षिगण ऋषिगण गंधर्वगण विराजमान है, विश्वावसु जिसमें रहते हैं और इंद्र वगैरह जिसमें से निकलते रहते हैं, सूर्य का जो स्थान है चंद्रमा का जो स्थान है, सब प्राणी भी उधर से आते जाते हैं। उस वायु मार्ग में हनुमान जी महाराज आज गरुड़ की तरह से शोभा दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज वायु को खींचते हुए मेघ जालों को खींचते हुए आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनकी भुजा यूं वायु के द्वारा मेघों को छिन्न भिन्न करती हुई जा रही है। ऐसे चलते चलते हनुमान जी महाराज ने एक और बाधा देखी। एक सिंगिका नाम की राक्षसी थी, वो चाहे जैसा रूप बनाने वाली थी, वो असल में राक्षसी थी। देखो सुरसा नाम राक्षसी एका, वो वास्तव में इतनी राक्षसी नहीं, राक्षसी बनकर के आई थी, और सिंगिका तो वास्तव में ही राक्षसी थी। कोई कहते हैं कि सिंग के जो ये राहु है ना, उसकी माँ का नाम सिंगिका है। जो भी हो वो राक्षसी है। मनसा चिंतयामास से उसने मन में सोचा कि ओहो कई दिन हो गए हमको भोजन नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं है, मिला है तो खूब मिला है, खूब अच्छा मिला है, तो कभी घी घना और कभी मुट्ठी चना, आज हमको घी घना वाला भोजन मिला है, इतना विशाल बंदर हमको मिला खाने के लिए, आनंद में डूब गई, वाह वाह आज तो हमको खाने को खूब मिलेगा। ऐसा करके उसने समुद्र के अंदर हनुमान जी जा रहे थे, छाया पड़ रही थी, छाया को उसने पकड़ लिया। छाया को पकड़ते ही ऊपर जाने वाले हनुमान जी रुक गए। अब हनुमान जी क्या करें, जा नहीं सके, छाया पकड़ ली। हनुमान जी महाराज ने देखा कि ये और बाधा आ गई, तो हनुमान जी महाराज थोड़े नीचे आए और नीचे आकर के कहा कि भाई कैसे हमको जाने नहीं देते। वो जोर से ठहाका मार के हंसने लगी, हंसने से उसके दांत बाहर आए। हनुमान जी ने देखा कि अरे इनको हंसना ही नहीं आता, हंसना वो नहीं होता कि दांत बाहर आए। हनुमान जी जोर से उसके मुंह पर मुक्का लगाया, मुक्का लगा के उसके दांत वांत सब तोड़ ताड़ करके उनकी बत्तीसी को फेंक दिया और उस समय में वो वहीं पर राक्षसी पूरी हो गई। राक्षसी जब वो मरमरा गई, हनुमान जी महाराज आगे के लिए रवाना हो गए। अब हनुमान जी महाराज खूब जो आराम से चलते जा रहे, चलते जा रहे हैं, और चलते 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 हनुमान जी महाराज अब लंका के निकटतम मार्ग में पहुंच रहे हैं। सिद्ध चारण वगैरह सब बड़े खुश हो रहे हैं, वे हनुमान जी महाराज को बड़ी शक्ति भी दे रहे हैं। श्रेष्ठ हनुमान जी महाराज फिर अपने वेग को और फिर अपने शरीर का विस्तार करके और आगे चले जा रहे हैं। स्वयं भुवै वा हनुमान श्रेष्ठस्य तस्य निपातने, और भाई वो जो सिंगिका थी राक्षसी, उस सिंगिका राक्षसी को इस प्रकार से करके हनुमान जी लौटने लगे तो ब्रह्मा आदि देवताओं को बड़ी खुशी हुई। और फिर उस समय आकाश के प्राणियों ने कहा, हे हनुमान तुमने आज बड़ा विलक्षण पराक्रम किया है, ऐसा पराक्रम संसार में दूसरा कोई प्राणी नहीं कर सकता है। हनुमान तुम्हारी सब बाधाएं दूर हो गई है, हनुमान तुम एक बहुत पवित्र काम के लिए जा रहे हो, हनुमान इस कार्य में सब देवताओं की तुम्हारे साथ सहमति है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हनुमान याद रखो जिसके पास चार चीज होती है वो कभी भी हारता नहीं है, सबसे बड़ा तो धैर्य, और दूसरी दीर्घ दृष्टि, और एक अपने अच्छी निर्मल मति, और एक कार्य में करने की निपुणता। ये चार चीज होनी चाहिए। धैर्य आवे, परिस्थिति आवे तो घबरावे नहीं, धैर्य रखे, और उसके ऊपर सूक्ष्म विचार करना चाहिए, उसकी दृष्टि कैसी है, इसके दृष्टि के अपनी दृष्टि निर्मल बनानी चाहिए, बुद्धि के अंदर सद्विचार पैदा करना चाहिए, और काम करने की एक प्रवीणता होती है वो प्रवीणता रखनी चाहिए। चार चीज जिसमें होती है वो कभी भी किसी प्रकार कर्म से जो है कष्ट नहीं पाता है। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से चले जाते हैं। जाते 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 अब हनुमान जी महाराज ने एक बहुत बड़ा जंगल देखा। जंगल देख करके विचार किया, यही त्रिकूट पर्वत के ऊपर रहने वाली लंका हो सकती है। और उसने देखा कि इसके यहाँ पर बड़ी खेती भी हो रही है। उसने देखा कि ये सागर की पत्नी के समान ये जो है यहाँ नदियों का संगम भी हो रहा है। और फिर हनुमान जी ने अपने विचार सोचा कि मैं लंका के पास तो पहुंच रहा हूँ, लेकिन इतना विशाल शरीर यदि मैं लंका में लेकर उतरूंगा तो इससे सबको कुछ न कुछ शंका हो जाएगी, क्योंकि ये राक्षस लोग भी बड़े मायावी हैं। इनके सामने अब बल और पुरुषार्थ इस प्रकार से प्रकट दिखाने का समय नहीं है। मैं पहले स्वयं इनकी माया को पहचानूं, इनके कार्य को पहचानूं, और उसके बाद फिर मैं ये देखूं कि किस प्रकार से ये जो है लंकावासी कितना बल रखते हैं। मुझे अपने शरीर को बहुत छोटा कर लेना चाहिए। हनुमान जी महाराज आकाश में ही अपने शरीर को छोटा कर रहे हैं। राक्षस लोगों को क्यों इधर उधर दृष्टि डालनी पड़े, वो अपने काम में लगे हुए, और हनुमान जी के लिए क्यों सोचे कि कोई यहाँ लंका में आ भी रहा है क्या, आकाश में क्या होता है वो क्यों सोचे। अपने शरीर को हनुमान जी ने छोटा किया। छोटा करते 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 पुनः प्रकृति में आ पैदे। जितने छोटे थे और उन बंदरों के बीच में बैठे थे और जामवंत जी ने जब तक बात नहीं कही थी उतने छोटे पहले बन गए, और उसके बाद अति संक्षिप्त भी, उसके बाद और भी छोटे हो गए, और भी छोटे होकर के और बहुत ही छोटे हो गए। जिस प्रकार से भगवान विष्णु त्रिविक्रम बना करके वापिस वामन हो गए थे, ऐसे ये भी छोटे हो गए। छोटे हुए हनुमान जी महाराज आकाश में सामान्य जीव जंतु पक्षी की तरह से उड़ते हुए से दिखाई दिए, और वे हनुमान जी महाराज इस लंकापुरी को आकाश से देख रहे हैं कि ओहो, लंकापुरी की तो चारों तरफ से बड़ी रक्षा की हुई है, कोई भी इधर यहाँ प्रवेश भी नहीं कर सकता है। ओहो, सुयोजन तो ये इधर से है, सोई योजन उधर से है, और जो है ये चारों तरफ से और उधर से इधर से उधर से तो कितना पता ही नहीं है, सब तरह से दो तरफ से तो ये सुयोजन है ही, और दो तरफ से और भी विशाल है। इस प्रकार से चारों तरफ जिसके समुद्र आया हुआ है, ऐसी ये लंका वास्तव में दुराधर्ष है, इसको कोई किसी प्रकार से जीत नहीं सकता है। त्रिकूट पर्वत के ऊपर कैसी सुंदर बनाई हुई लंका है, कैसे सुंदर इसमें मार्ग बनाए हुए हैं, कैसे इसमें बड़े बड़े पर्वत हैं, कैसे यहाँ पर बगीचे हैं, क्या इनके यहाँ बनाने की शोभा है। इन सब को देख करके, लंका को देख करके हनुमान जी महाराज खूब विचार करते हैं, और विचार करके और वहाँ पर हनुमान जी महाराज चुपचाप एक पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर आकर हनुमान जी एकदम हल्के से होकर उस पर्वत के वहाँ आकर बैठ जाते हैं, और वहाँ जितने पशु पक्षी आदि थे वो हनुमान जी की तरफ देखते तो हनुमान जी उनकी तरफ आंख निकालते हैं। छोटे से हनुमान जी आंख निकालते हैं तो व्यथयन मृगत भिजान, वो जितने वहाँ पर पशु पक्षी थे सब व्यथित हुए, इधर से उधर भागने लग गए। और सागर का इस प्रकार से लंघन करने के बाद इस तीर पर आए, तब वो लंका उनको अमरावती के समान दिखाई दी, और त्रिकूट पर्वत पर स्थित उस लंका को देखा तो देख करके जिस वृक्ष के ऊपर वो चढ़े जाकर के बैठे थे उस वृक्ष से स्वतः ही हनुमान जी के ऊपर फूलों की वर्षा होती चली गई। हनुमान जी महाराज 100 योजन मार्ग को पार करके आए थे, लेकिन हनुमान जी को लेश मात्र भी वहाँ पर कष्ट नहीं हुआ, कोई पसीना नहीं आया, कोई फू फा करने नहीं लगे, चुपचाप शांति के साथ वहाँ पर बैठे हुए विचार कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं लंका में तो आ गया हूँ, अब आगे मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ कैसे कैसे वृक्ष हैं, कहाँ हमको मीठे फल मिलेंगे, कहाँ हमको शहद के छत्ते मिलेंगे, कहाँ हमको और चीजें मिलेंगी, ये सब हनुमान जी महाराज बड़ी चतुराई से वृक्षों को देख रहे, फलों को देख रहे। वहाँ बैठे बैठे वे पत्तों के अंदर छिपे हुए और कई प्रकार के वृक्षों को देखते हैं उस पर्वत के ऊपर ही। यहाँ भी भाई पर्वत तो बड़े श्रेष्ठ हैं और यहाँ बड़े अच्छे अच्छे वृक्ष हैं। चितवन के यहाँ वृक्ष, पुष्पों की यहाँ लताएं, वृक्षों के ऊपर भी बड़े बड़े पुष्प, बड़ी सुगंधी आती है। यहाँ भी बहुत बड़ी बावड़ियां हैं, यहाँ विविध प्रकार के जलाशय हैं, यहाँ भी जलाशय पूरे भरे हुए हैं। संपूर्ण ऋतुओं में संपूर्ण फल देने वाले वृक्ष हैं। ऐसे बड़े बड़े बगीचे देखे और बगीचे देख करके देखा, विचार किया कि रावण इस लंका को खूब सुरक्षित रखता है। देखो चारों तरफ से खाइयां खुदी हुई है और यहाँ उन खाइयों के अंदर पद्म के फूल खिले हुए हैं। सीता का हरण करने के कारण से रावण यहाँ और ज्यादा सुरक्षा कर रहा है। चारों तरफ से शस्त्र लिए हुए, देखो ये राक्षस लोग कैसी रक्षा कर रहे हैं। ये राक्षस लोग परकोटों के ऊपर बैठे हुए, बाण अपने हाथ में, धनुष बाण लिए हुए, हर एक पक्षी पर भी नजर डाल रहे हैं। ओहो, रावण के यहाँ बड़ी सुरक्षा हो रही है। लोगों के घर है, एक सफेद कली कराए हुए बड़े अच्छे मालूम देते हैं। लोगों के घर बहुत ऊंचे ऊंचे मंजिल वाले हैं और ऊपर पताका लगाई हुई है। तोरण द्वार सबके यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हनुमान जी महाराज ने ऐसी लंका को देखा। लंका को देखने के बाद अब हनुमान जी महाराज ने जो है विचार किया, इस लंका का निर्माण जो विश्वकर्मा ने किया है बहुत सोच समझ करके किया है। हनुमान जी ने देखा कि अब मुझे किधर किस मार्ग से जाना चाहिए। तब हनुमान जी उत्तर की तरफ धीरे 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 वृक्षों के अंदर छिपे 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 वे जाते हैं और वहाँ पर उत्तर के दरवाजे पर रहने वाले उन राक्षसों की ओर देखते हैं जो लंका की रक्षा कर रहे हैं। और देखा कि इनके पास क्या क्या हथियार है। इनके पास में वर्तमान में इनके पास घोटा है, इनके पास में बाण है, इनके पास में परिघ है, इनके पास तलवार वगैरह भी है। अर्थात इनके पास शस्त्र भी है और यहाँ पर अस्त्र भी है। रावणं च रिपुं घोरं चिंतयामास वानर। हनुमान जी ने देखा कि केवल मुझे यहाँ सीता की ही खोज नहीं करनी है, यहाँ पर मुझे रावण के विषय में पूरा ज्ञान करना है। और यहाँ आकर के ओहो, यदि हमारे बंदर यहाँ आ जाते तो भाई वो निरर्थक ही आते, उनको कुछ हाथ में नहीं लगता। अरे ये राक्षस तो इतनी संख्या में बांदर यदि हल्ला गुल्ला करते करते आ भी जाते तो लंका तो इनके द्वारा किसी प्रकार से जीती जाने वाली नहीं है, क्योंकि कैसे जीते हैं लंका को। यहाँ तो राक्षसों की संख्या भी बहुत बलवान राक्षस है। इस लंका को अब किस उपाय से नष्ट किया जाए। साम दाम दंड भेद युद्ध, ये राजा को जीतने के कायदे होते हैं, पर कोई भी कायदा इन पर लागू होने वाला नहीं है, क्योंकि राक्षस ये बड़े स्वामी भक्त दिखाई देते हैं। न तो हम इनको कोई लालच दे सकते हैं, न हम इनको आपस में कभी लड़ा करके भेद बुद्धि कर सकते हैं, और युद्ध के द्वारा तो हम इनको बस में कर नहीं सकते हैं। यहाँ तक आना भी बड़ा मुश्किल है। एक तो अंगद आ सकते हैं, एक नील आ सकते हैं, एक सुग्रीव आ सकते हैं, यही आ सकते हैं, और तो कौन आ सकते हैं। चलो पहले तो अपनों यही करना है कि सीता जीवित है या मर गई है, इसी का पहले विचार करना है। ऐसा विचार करके हनुमान जी महाराज जो है थोड़ी मुहूर्त विश्राम करके और फिर आगे धीरे धीरे चल रहे हैं। देखो ये जो विश्राम करना क्या है, ये विश्राम करना वैसा विश्राम नहीं कोई थकावट का विश्राम, ये विश्राम है थोड़ा सोच समझ करके, क्योंकि अज्ञात स्थल पर आए हैं और अज्ञात व्यक्तियों के पास आए हैं, इसलिए सोच समझ के करने का विश्राम है। हनुमान जी महाराज सोचते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा उपाय करना है जिससे हम लोग राक्षसों को ठग लेवे। अच्छा हुआ मैं अकेला आया, क्योंकि बहुत से लोग आ जाने पर हम लोगों की आपस की कोलाहल से और से ये सब लोग हम लोगों पर बहम करते हैं। और जो सोच विचार करके जिस लंका के साथ युद्ध किया जाना चाहिए था, वो बिना सोचे समझे हम बांदरों को यहाँ पर ये लोग मार देते, और सीता के यहाँ रहते हुए भी, रावण को यहाँ जानते हुए भी संभवतः हम लोग इस युद्ध को जीतते या हारते कुछ पता नहीं है। मैं अकेला आया हूँ, एक दृष्टि से ठीक हूँ, ताकि हम लोग आगे जाकर शक्ति का संचय कर लेंगे, परंतु मैं एक अकेला आया हूँ, मुझे मेरी भी यहाँ पूरी सुरक्षा करनी है। यदि मुझे राक्षसों ने कभी मार दिया तो राम को जाकर कौन कहेगा, बंदरों को जाकर कौन कहेगा। मुझे ऐसा करना है कि इन सबको माया में डालना, इन सबको चकमा देना है, इसलिए सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले मुझे रावण के महल की ओर जाना चाहिए। किस उपाय से मैं सीता को यहाँ पर देखूं? तो राक्षसीता तो संभवत है, सीता तो संभवत है राक्षस राज रावण के महल में हो सकती है। महल में भी है कि नहीं, क्या पता उसको नष्ट कर दिया हो, मार दिया हो क्या। नहीं, जैसा उन्होंने बताया था वैसा तो उस हिसाब से सीता मारी तो नहीं गई है। अच्छा, यदि नहीं भी मारी गई हो तो सीता के दर्शन करना और मिलना जरूरी है। और दूत तो वो होता है कि जो देश काल का किसी प्रकार का जो है विरोध न करते हुए कौन प्राणी क्या करते हैं ये सब उसका निश्चय कर ले। कई कई दूत ऐसे होते हैं जो अपने में अकल तो ज्यादा मानते हैं लेकिन वो अपनी बातों के अंदर शत्रु का हित कर बैठते हैं, न चाहते हुए भी हित कर बैठते हैं। उनकी बुद्धिहीनता से अपने ही स्वामी का अहित हो जाता है। अपने स्वामी का अहित न हो और जो है किसी प्रकार से समुद्र का लंघन मेरा व्यर्थ न जाए, ऐसा मुझे काम करना है। और रावण का मुझे अनर्थ करना है, मुझे ऐसा अनर्थ करना है कि जिससे वो अनर्थ मेरा युद्ध के अंदर काम आए। ओहो, राक्षस राज को मानना पड़ेगा कि बड़ा बुद्धिमान है। वायुरप्यत्र नागत नाग्यात चरेत इति मतिर मम। यदि स्वयं मेरे पिता वायु भी आ जाए उनके लिए भी ये ज्ञान ये यहाँ का स्थान ज्ञात नहीं है। ओहो, राक्षस लोग तो वास्तव में बड़ी बुद्धिमानी से चलते हैं। तो यह हम मेरी तिष्ठा भी, मैं अभी यहीं रहता हूँ एक जगह।